وقال ربكم ار فرمايا تمہارے رب نے, رب خود فرماتا ہے ادعونی مجھے پکارو, استجب لکم. سبحان اللہ, میں جواب دوں گا تمہیں. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ کتنے سوچیں گے کتنی یہ خوبصورت بات ہے, کتنی یہ پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کیا کہ ادعونی مجھ کو پکارو میں تمہیں جواب دوں گا. یہ کسی پیغمبر سے نہیں کہا جا رہا, آپ لوگوں کو بتا دیں یعنی جو عام ایمان والے ہیں, مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا. اللہ اکبر, پکار سے مراد یہاں پہ دعا مانگنا بھی ہے اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کو پکارنا, عبادت اس کی کرنا. جب تم اللہ کو پکارو گے, جب تم اس سے کوئی دعا کرو گے تو وہ تمہیں جواب دے گا. یہ قرآن کہتا ہے, آپ کہتے ہیں جواب بھی نہیں آتا صرف اس لیے کہ کچھ ڈیلے ہو گیا, صرف اس لیے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا اس دعا کو, شاید اس لیے کہ کوئی آنے والی مصیبت تھی جو ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی لیکن اس دعا کے لیے اللہ تعالیٰ نے, اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹال دیا, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نہیں میری تو سنی نہیں جاتی. ایسا نہیں ہے, قرآن کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم. یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے, اس کے احسان پہ قربان جائیں کہ وہ خود فرماتا ہے مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا. یہ نہیں فرمایا کہ پیغمبر مجھے پکاریں, نیک لوگ بس مجھے پکاریں, ایسے لوگ جو اولیاء اللہ ہیں وہ بس مجھے پکاریں, بلکہ ہر ایک کو دعوت ہے مجھے پکارو, پکار کے تو دیکھو, اس لیے کہ وہ سب کا رب ہے. اور اس کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں, کوئی بھی پکارتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو جواب ضرور دیتا. تم کہتے ہو یا اللہ اے میرے رب, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لبیک, اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے. اس کے جواب دینا, ہاں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہم نے دعا کی ایز اٹ از نہیں ہوئی پوری, ہمیں لگتا ہے کہ جواب نہیں ملا. جواب سے مطلب یہاں پہ اس کو قبول کرنا بھی ہے, جواب نہیں ملا نہیں, اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہتر چیز عطا فرماتا ہے, جو مانگی ہوتی ہے اس سے بڑھ کے عطا فرماتا ہے, یہ اس کا جواب دینا ہے. تو دعا, دعونی دعا کا معنی ہوتا ہے پکارنا, تو انسان اکثر تو کسی ضرورت کے تحت پکارتا ہے نا, کسی حاجت کے لیے پکارتا ہے, لیکن ویسے بھی پکارتے ہیں جب انسان کی ویسے پکار کیا ہے, کہ ہر وقت ضرورت کے لیے نہیں پکارنا تھا, کبھی ذکر اللہ بھی کر کے, یہ بھی پکار ہے نا, یہ بھی پکارنا ہے اللہ تعالیٰ. جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا یہ بھی اللہم لک الحمد, وہ آپ دیکھیں اب یہ بھی ایک پکار ہے لیکن ایک دعا بھی ہے اس میں. تو یہ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے شرف دیا ہے اس امت کو کہ ان کو خود فرمایا میرے سے مانگو اور قبولیت کا وعدہ بھی کر لیا, پھر جو دعا پھر بھی نہ مانگے اور اپنے آپ کو اتنی بڑی چیز سمجھے. اللہ تعالیٰ کو تو پسند آتا ہے کہ مجھ سے مانگا جائے. قتادہ فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں یہ خصوصیت انبیاء کی تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا تھا کہ آپ دعا کریں میں قبول کروں گا, اور امت محمدیہ کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ حکم تمام امت کے لیے عام کر دیا گیا, سب کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو پکارے گا. امت اجابت بھی اور امت دعوت بھی اس میں آ گئی, چاہے وہ ماننے والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا نہیں. تو اسی لیے سفیان الثوری اپنی دعاؤں میں فرمایا کرتے تھے اے وہ اللہ جسے وہ بندہ بہت ہی اچھا لگتا ہے جو کثرت سے اسے دعائیں کرتا ہے, اور وہ بندہ اسے برا معلوم ہوتا ہے جو اسے دعا نہ کرے. اے میرے رب, یہ صفت تو صرف تیری ہی ہے, ये सिर्फ तेरी ही शान है कि जो तुझसे ना मांगे तो तू ना खुश होता है, और इंसान की हालत क्या है कि मांगे तो वो नाराज होते हैं। अब मांगने ही आ गए हैं, आपने हमारा ही दरवाजा देख लिया, अब हर वक्त इनका काम ही ये है, मांगते ही रहते हैं। जब वो इनको कोई चीज मांगनी होती हमें फोन कर देते हैं, हमें कितना गुस्सा आता है, लेकिन अल्लाह ताला इससे खुश होता है। मोहम्मद बिन मुस्लिम अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु की मौत के बाद उनकी तलवार के दरमियान से एक पर्चा निकला जिसमें तहरीर था कि तुम अपने रब की रहमतों के मौके को तलाश करते रहो, बहुत मुमकिन है कि किसी ऐसे वक्त तुम दुआए खैर करो कि उस वक्त रब की रहमत जोश में हो और तुम्हें वो सआदत नसीब हो जाए जिसके बाद फिर कभी कोई हसरत और अफसोस नहीं करना पड़े। तो मतलब यह है कि हो सकता है दुआ का वो लम्हा जिसमें दुआ कबूल होती है वो तुम्हें मिल जाए और वैसे ही हो जाए। अल्लाह अकबर। तो आप देखें कि दुआ इंसान को मांगना, अल्लाह ताला खुद बता रहा है कि मांगो मुझसे, मुझसे सवाल करो, मुझसे कह दो, और इंसान फिर भी अगर औरों के दर पे जाके वहां मांगने लग पड़े तो मुझे बताएं ये आयत आपको क्या कह रही है। अच्छा, कुरान के ऊपर हमारा ईमान है ना, हर मुसलमान का है, ठीक है। अब मुझे बताएं सिर्फ इतना, वो लोग जो दरगाहों पे जाके मांगते हैं या कब्रों को समझते हैं ये कब्रें वाले इनको पुकारेंगे, ये हमारी दुआएं सुनेंगे, इनकी फिर हमारी इनके आगे, इनकी अल्लाह के आगे, और कोई तो डायरेक्टली उनसे मांगने शुरू हो जाते हैं कि इन्होंने ही हमें देना है, बस इन्हीं के सदके हमें मिला हुआ है, इन्हीं के दिया हम खाते हैं, इन्हीं की वजह से ये सारे तूफान बंद हुए हैं, इन्हीं की वजह से ये सारा सिटी चल रहा है अमन के साथ। अल्लाह माफ करे इस तरह के शिरकिया जुमले बोलते हैं। मुझे बताएं, कुरान तो कह रहा है कि तुम्हारा रब फरमाता है मुझसे मांगो, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारे जवाब देता हूं। कहाँ लिखा हुआ है कि नहीं, हर एक नहीं कर सकता, बाकी लोग किसी के थ्रू आए डायरेक्ट नहीं। यही तो, इसलिए आप कुरान को पढ़ें, इसका टेक्स्ट पढ़ें, ऐसे ना करें कि बस तर्जुमों को पढ़ रहे हैं, वो पता नहीं किसने क्या लिख दिया और क्या क्या उसको बना दिया तरोड़ मड़ोड़ के अपने अकीदे के मुताबिक। कुरान आपको कह रहा है कि तुम्हारा रब फरमाता है, खुद उसने फरमा दिया, उसने दरवाजा बंद तो किया ही नहीं। हम क्यों अपने लिए खुद दरवाजे बंद कर लेते हैं कि नहीं जी वो बस अल्लाह ताला को तो पुकारे तो वो तो हम नहीं खुद कर सकते, हर एक के लिए एक सीढ़ी चाहिए होती है, तो अल्लाह ताला तक पहुंचने के लिए ये हमारी सीढ़ी है, इनको हम जरिया बनाते हैं, इनका वसीला ना पकड़ा तो हमारी तो दुआ ही नहीं कबूल होनी। किधर लिखा हुआ है उदउनी, नहीं मुझको पुकारो, सबको कहा गया, तो फिर ये कहां से अकीदे बना लिए, ये कहां से चीज। इस आयत को हाईलाइट कर लें कि जब कोई आपसे ऐसा कहे तो उनको बताएं कि कुरान तो ये कहता है। और यहां पे दूसरा माना क्या है इबादत का, दूसरा माना दुआउनी का, क्योंकि दुआ जो है वो इबादत भी है, इबादत का, बल्कि मुखल इबादत कहा गया है कि दुआ इबादत का मगज है, इबादत दुआ ही इबादत है, कि मेरी ही इबादत करो, तौहीद को ही मान लो, मैं तुम्हारी इबादत कबूल करूंगा। और अगर वैसे दुआ माना लिया जाए तो वो भी सही है, दोनों ही सही है। तो इसका मतलब है कि दुआएं करना भी इबादत है और दुआ करनी चाहिए, ये सोच के जितनी देर हम दुआ में हैं हम इबादत में ही हैं। तो क्या दुआ करने के लिए वुजू करना जरूरी है? नहीं, आप एक तो दुआ करते हैं जिसमें आप अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हैं, फिर अल्लाह ताला की हमदो सना के बाद दुरूद भेजते हैं, फिर उसके बाद दुआ करते हैं, ये तो एक फॉर्मल तरीका है। लेकिन वैसे भी बैठे बैठे अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, अल्लाह सारा कुछ तेरे हाथ में, अल्लाह मेरे मसलों को हल कर दे, यानी बैठे बैठे इंसान हर वक्त ही कुछ ना कुछ कहता जा रहा है, बातें करता जा रहा है, दिल में कभी जुबान से अल्लाह ताला को पुकारता जा रहा है। ये पता है दुआ क्यों इबादत है? इसलिए क्योंकि जब दुआ इंसान करता है ना, किससे आप मांगते हैं, जिसको आप इतना पावरफुल एक तो समझते हैं कि ये भाई कुछ मेरे लिए कर सकता है। अब मसलन आपको मदद की जरूरत है, या चलो बच्चे को ले लेते हैं, बच्चा जब उसको कुछ तकलीफ होती है तो किसकी तरफ भागता है? अपनी माँ की तरफ। आप इसके अंदर देखिए ना, इससे आपको समझ आएगा।
क्यों? इसलिए कि वो समझता है कि ये माँ जो है ना, ये एक ताकतवर हस्ती है, ये मुझे बचा लेगी। नंबर टू, तो इसका मतलब है कि इंसान जिससे मांगता है ना, उसको ताकतवर समझता है, उसको कुदरत का मालिक समझता है, उसको अपने मसले को हल करने के काबिल समझता है। जब इंसान किसी और से मांगता है ना, तो इसका मतलब उसको समझ रहा है। तो अल्लाह ताला के साथ शेर की यही तो है, ये शेर की है। और फिर इंसान का जिसके साथ ताल्लुक होता है ना, उसी से कहता है। अब देखिए, 10 औरतें बैठी हैं, वो बच्चा सारों के पास क्यों नहीं जा रहा, अपनी माँ के पास जाएगा, उसका एक ताल्लुक है उसके साथ। तो वाकई जब अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक होता है ना इंसान, फिर अल्लाह ताला को ही पुकारता है। और जिन्होंने अल्लाह से ताल्लुक तोड़े हुए हैं ना, वो फिर इधर उधर भागते। इसीलिए पुकारना किसी और को शिर्क बन जाता है, कि आपने इसके अंदर इतनी पावर समझ ली कि वो आपके मसाइल हल करेगा, वो जो कह देगा वैसा हो जाएगा। अल्लाह ताला तो औलाद नहीं देना चाहता, लेकिन ये कह देगा तो औलाद भी मिल जाएगी, और बीमारी भी दूर हो जाएगी, और शौहर भी सही हो जाएगा। ये तो फिर समझ लें कि वो ताकतें उसके अंदर समझ ली, और वो अल्लाह ताला से जो भी करवा ले, नऊज़ु बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। तो ये दुआ मांगना ना इबादत ही होता है, इसीलिए दुआ किसी और से ना मांगो, सिर्फ अल्लाह से मांगो। किसी और को बीच में ना लेकर आओ, डायरेक्ट तुम्हारा रब जब खुद फरमा रहा है, उसने अपने दरवाजे खोल दिए, वो तुम्हें खुद पुकारता है। जब हदीस में तुम्हारे नबी ने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारा रब आखिरी तहाई रात में खुद आसमान दुनिया पे नजूल फरमा के फरमाता है, कोई है मेरे से कुछ चाहने वाला, कुछ मांगता है मेरे से, कोई हाजत है किसी की तो मैं उसकी पूरी करूं, कोई है तौबा करने वाला तो मैं उसकी तौबा कबूल करूं। उस सारी चीजों को छोड़ के वो जाके दरगाह के ऊपर सजदे कर रहा, करा यहीं से मिलना है जी हमें, और हम जो खाते हैं वो भी अस्तग़फिरुल्लाह, वो भी यहीं से हमें मिलता है, इनके सदके इनके तुफैल ही हम जी रहे हैं। अल्लाह अकबर, तुम्हारा रब पुकारता, तुम्हारे नबी ने बताई है ये बात, ना नबी की बात झूठ हो सकती है, ना रब की बात झूठ हो सकती है। वो तुम्हें खुद पुकार रहा है, तुम उसकी पुकार छोड़ के और किधर किधर जाके धक्के खा रहे हो, किस किस दर पे तुम अपने माथे टेक रहे हो। उदउनी अस्तजिब लकुम, अब ये तसल्ली हमारे लिए कितनी काफी है, मेरे रब ने बस फरमाया ना, इसी का वास्ता देना, इसी आयत को सामने रखे ना, अल्लाह ताला के, अल्लाह के नामों का आप वास्ता उसको दे सकते हैं, वो बिल्कुल सही है। अल्लाह ताला की ये बात को आप उसको वास्ता दे सकते हैं, अल्लाह तूने खुद फरमाया उदउनी अस्तजिब लकुम, अल्लाह तू मेरी दुआ कबूल कर ले, तू मेरी दुआ सुन ले, तू खुद फरमाता है, तुम मुझसे मुझे पुकारो, मैं तुम्हें जवाब देता हूं, मैं तुम्हारी पुकार को सुनता हूं। तो कुरान पे ईमान लाने वाले कैसे लोग हैं कि वो ये पढ़ते भी हैं और उसके बाद फिर कहीं और जाके मांगते। अल्लाह हू अकबर।